आहान और चाहत के एक्सीडेंट को लगभग एक हफ्ता बीत चुका था। आहान के पैर की चोट काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, जबकि चाहत अभी तक रिकवर नहीं कर पाई थी क्योंकि उसकी डिलीवरी भी हुई थी। आज उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था। डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आयुष कार्तिका के साथ था, जो चाहत का ख्याल रख रही थी। इस एक हफ्ते में उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। पेपर्स क्लियर करने के बाद कार्तिका ने उन्हें आयुष को देते हुए कहा, ये पेपर्स रिसेप्शनिस्ट को दे देना। मिसेज ओबेरॉय का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर ने एक नर्स असाइन कर दी है। फिर भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम कॉल करके पूछ सकते हो। आयुष बिना कुछ बोले कार्तिका के चेहरे की तरफ देख रहा था। आयुष ने कोई जवाब नहीं दिया तो कार्तिका ने पेपर्स को गोल किया और उसके सिर पर मारते हुए कहा, आखिर ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कल से खोए हुए लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? ठीक नहीं लग रहा है तो डॉक्टर से चेकअप करवा लो। आयुष ने अपने दिल पर हाथ रखा और भौहें उठाकर कहा, जरूरी नहीं कि बीमारियां शरीर से ही जुड़ी हुई हों। कुछ बीमारियां दिल से भी जुड़ी हुई होती हैं मैडम, और मेरी बीमारी को समझने के लिए मुझे डॉक्टर की नहीं, एक नर्स की जरूरत है। आयुष कार्तिका को पसंद करने लगा था। कार्तिका ने उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और हंसकर कहा, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन हर चीज में मजाक करना भी अच्छा नहीं है। कहीं तुम्हारा मजाक किसी ने सीरियसली ले लिया तो तुम्हारे पीछे आ जाएगी। हाय, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ कि कोई मेरे पीछे आए, लेकिन कोई आ ही नहीं रही है, आयुष ने मुंह बनाकर कहा। कार्तिका ने जबरदस्ती पेपर्स आयुष को पकड़ाते हुए कहा, इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में नहीं मिल पाएंगे तो कोई बात नहीं, बाहर टाइम मिलने पर जरूर मिलेंगे। चलो अभी बाय, मुझे बहुत काम है। इतना कहकर कार्तिका वहां से चली गई। वहीं उसके जाने के बाद भी आयुष उसको मुस्कुराते हुए देख रहा था। इस बीच आहान आयुष के आने का इंतजार कर रहा था ताकि वो जल्द से जल्द चाहत को वहां से ले जा सके। कार्तिका से बात करने के चक्कर में आयुष जल्दी नहीं आ पाया और आहान ही उसके पीछे आ गया। आहान ने आयुष और कार्तिका की बातें सुन ली थीं और वो समझ भी गया था कि आयुष के दिल में क्या चल रहा है। आहान ने सार्कास्टिकली सिर हिलाया और आयुष के सामने जाकर खड़ा हो गया। आज आयुष के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने आहान को देखा वो हड़बड़ाकर खुद को नॉर्मल करने लगा। वो, भाई मैं बस आई रहा था, बीच में नर्स मिल गई, आयुष सफाई देने की कोशिश कर रहा था। तभी आहान ने उसके बाद बीच में काटकर कहा, नर्स मिल गई थी या तुम खुद उसके आगे जाकर खड़े हो गए थे? बोलते हुए आहान ने आयुष के हाथ से पेपर छीने और वहां से जाने लगा। कुछ कदम आगे बढ़कर आहान ने बिना पलटे कहा, अगर पसंद करते हो तो जाकर डायरेक्ट बोलो ना, इस तरह बहाने बनाओगे तो कोई और बीच में आ जाएगा। आहान अपनी तरफ से एडवाइस देकर वहां से चला गया था, जबकि आयुष और ज्यादा हड़बड़ा गया था। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, लगता है भाई और कार्तिका का मिलकर आज मुझे हार्ट अटैक देकर रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भाई खुद ही जाकर उससे बात करने लगे, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? आयुष ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और फिर चाहत के पास चला गया। वैसे भी उसका और शिवानी का ज्यादातर टाइम चाहत के बच्चे के साथ खेलते हुए ही बीतता था। दूसरी तरफ आहान ने पेपर्स रिसेप्शन पर जमा करवाए और उसके बाद वो कमरे की तरफ आ रहा था। उसे कार्तिका दिखी तो वो चाहत के पास जाने के बजाय कार्तिका के पास जाकर बोला, अगर तुम फ्री हो तो हम बात कर सकते हैं क्या? कार्तिका ने हाँ में सिर हिलाया। आयुष उसके साथ हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में आ गया था। वहां उन दोनों ने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की। कार्तिका ने इतने दिनों में नोटिस कर लिया था कि आहान काफी कम बात करता है। अगर वो किसी से ठीक से बात करता था तो वो सिर्फ चाहत थी। बातचीत की शुरुआत करते हुए कार्तिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, आपने मुझे अचानक इस तरह यहाँ क्यों बुलाया? कोई बात करनी है क्या? हाँ, बात तो करनी है, पर मेरे बारे में नहीं, आयुष के बारे में। मेरा भाई बहुत सिंपल है और थोड़ा शाय भी। वो तुम्हें पसंद करने लगा है और शायद इस बात को बताने में महीनों या सालों लगा दे, लेकिन मैं थोड़ा अलग हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप किसी को पसंद करते हो तो सही वक्त पर आपको बता देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जगह लेने के लिए कोई और आ जाए। मैं इसके लिए तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आयुष अच्छा लड़का है तो तुम इस बारे में सोच सकती हो, और तुम्हारी हाँ है तो मैं तुम्हारी फैमिली में आकर बात कर लेता हूँ। आहान ने सीधे सीधे सब कुछ कह गया। कार्तिका के चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट आ गई। उसने जवाब में कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आयुष एक बहुत अच्छा लड़का है, पर हम दोनों एक दूसरे के लिए राइट पर्सन नहीं है। मना करने का बहाना बहुत बुरा है कि लायक नहीं है या मुझसे भी अच्छा कोई और मिल जाएगा। जो बात है वो सीधे सीधे बताओ ना, आहान ने रुखे तरीके से कहा। कार्तिका ने गहरी सांस ली और कहा, एक्चुअली मेरे मॉम डैड नहीं है और मैं अपने भाई बहनों को देखती हूँ। मैंने कभी शादी करने का नहीं सोचा था क्योंकि वो अभी छोटे हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं अपना ध्यान इधर उधर किसी और पर दूं। फिलहाल उनके लिए एक बड़ी बहन और माँ बाप की ज्यादा जरूरत है। ऊपर से हम लोगों के क्लास में भी काफी फर्क है। आहान कार्तिका की मजबूरी समझ सकता था। उसने कुछ पल रुककर जवाब में कहा, शायद तुम चाहत के बारे में ठीक से जानती नहीं हो। भले ही कुछ दिन पहले एक अमीर आदमी ने उसके बाप होने का दावा किया है, लेकिन अपनी माँ की बीमारी के चलते उसने काफी सारी पार्ट टाइम जॉब्स भी की हैं। उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर आयुष से तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारे भाई बहन की जिम्मेदारी नहीं लेगा? लेकिन मैं और मेरे भाई बहन किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं सर, कार्तिका ने नजर झुकाकर कहा।
तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो तो किसी पर बोझ बनोगी भी नहीं। बस हाँ, अपने भाई बहन को आयुष के साथ रहने के लिए ला सकती हो। वैसे भी हमारी कोई बड़ी फैमिली नहीं है जो तुम्हें इस बात के ताने देगी कि शादी के बाद तुम अपने भाई बहन को अपने साथ लेकर आई हो। जो दिल में है वो बताओ कि तुम्हें आयुष पसंद है या नहीं, और मुझे क्लियर जवाब सुनना है, आहान ने सीधे सीधे पूछा। जवाब देने से पहले कार्तिका का आयुष के बिहेवियर के बारे में सोचने लगी। वो एक हफ्ते से चाहत की देखभाल के लिए हॉस्पिटल में थे, और इस बीच कभी भी कार्तिका को काम होता तो आयुष उसके भाई बहनों को स्कूल से पिक करने के लिए लेकर जाता था। कार्तिका के साथ साथ उसकी दोस्ती कार्तिका के छोटे भाई बहन के साथ भी हो गई थी। कार्तिका ने आहान की तरफ देखा और हां में सिर हिला दिया था। आहान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट थी। उसने कहा, वेलकम टू आवर फैमिली, थोड़ा टाइम को एक दूसरे दो और फिर आगे बढ़ना। इतना कहकर आहान वहां से उठकर जाने को हुआ, तभी कार्तिका ने खड़े होकर तेज आवाज में कहा, थैंक यू सो मच सर। अब तक यही सुना है कि अमीर और बिजनेस फैमिली हमेशा अपने क्लास के हिसाब से ही शादी जैसे रिश्ते आगे बढ़ाती है, लेकिन आपने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। तुम ये डिजर्व करती हो, और वैसे भी क्लास और बाकी चीजों से ज्यादा प्यार मायने रखता है, और वो तुम दोनों के बीच है। हमारी बात हुई है, मैं इस बारे में आयुष को अभी नहीं बताने वाला हूँ, तुम देख लेना तुम्हें क्या करना है, आहान ने जवाब दिया और फिर वहां से चला गया। आहान के जाते ही कार्तिका के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने तुरंत किसी को कॉल किया और कहा, सोचा नहीं था इतनी आसानी से वो मेरी बातों में आ जाएगा। मानना पड़ेगा अक्षु दीदी, आपको आपका प्लान बहुत अच्छा था।
दूसरी तरफ कॉल पर अक्षरा गोयंका थी। उसने जवाब में कहा, हाँ, आहान और आयुष के बिहेवियर में काफी फर्क है, और आयुष को बेवकूफ बनाना भी काफी आसान है। तुम एक काम करो, इस ड्रामे को कंटिन्यू रखो और किसी को पता मत चलने देना कि हम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। अक्षरा अपनी कजिन कार्तिका को सहारा बनकर फिर से ओबेरॉय फैमिली तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। इस बार कार्तिका का निशाना आहान नहीं बल्कि आयुष था। वो जानती थी कि वो आहान को ना तो मात सकती है और ना ही उसका कुछ भी बिगाड़ कर सकती है, तो इस बार आयुष को निशाना बनाकर वो उन्हें बर्बाद करना चाहती थी। वहीं इन सब से अनजान आहान काफी खुश था, क्योंकि उसने आयुष की बिहाफ में कार्तिका से बात कर ली थी। रूम में आने पर उसने देखा कि चाहत की पैकिंग हो चुकी थी और अब वो घर जाने के लिए तैयार थे। आहान काफी देर बाद कमरे में चाहत के पास आया था, तो शिवानी ने कहा, अच्छा तुम दोनों बातें करो, हम बाहर गाड़ी वगैरह का देख लेते हैं। हॉस्पिटल में होने की वजह से आहान और चाहत की ठीक से बात भी नहीं हुई थी। जैसे ही शिवानी और आयुष वहां से हटे, आहान चाहत के पास आया और उसको सीने से लगाकर उसके फोरहेड पर किस किया। उसने चाहत को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में इस वक्त काफी सवाल हैं, एक बार घर जाते हैं और फिर बात करेंगे। चाहत ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर वहां से अलग हो गई। फिर अचानक उसने आहान से पूछा, हाँ मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन क्या हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं? मुझे अच्छे से याद है, पार्क में मुझे एक लड़का मिलता था जो मुझे सबसे प्रोटेक्ट करता था और ये कहता था कि बड़े हो जाने के बाद वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। आहान ने अब तक इस बारे में गौर नहीं किया था, लेकिन चाहत के कहते ही उसे सब याद आ गया था और उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। चाहत ने भले ही उसे ना पहचाना हो, पर आहान के दिमाग में सारी यादें ताज़ा हो गई थीं।